रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में बात करें, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आर्थराइटिस क्या है।
जी देखिए, आजकल हम अपने मुआशरे में बहुत सारे देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिन ख़वातीन हज़रात जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके जोड़ों का बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला सिर्फ जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है सिर्फ उनमें नहीं है, ये बच्चों में भी आपको नज़र आ सकता है।
जी
20 से 40 50 साल की उम्र के अफराद जो हैं उनमें भी ये मसला सामने आ सकता है। अब ये आर्थराइटिस जो है ये असल में दो अल्फाज का मजमू है,
जी
आर्थरोन और TIS। आर्थरोन जोड़ को कहा जाता है और
अच्छा,
TIS जब लगाया जाता है तो वो किसी जगह पे सोजिश को जाहिर किया
यानी
जाता है।
जोड़ों की सोजश।
जी, जोड़ों की सोजिश। और जब सोजिश होती है तो उसके साथ जो है वो दर्द और दूसरी उसकी इलामात। अब ये मसला जो है आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, और आर्थराइटिस एक एक कैसे कह लें कि एक छतरी के तौर पे एक लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। असल में आर्थराइटिस की 100 से ज़्यादा अकसाम हैं, ये मुख्तलिफ
अच्छा
तरह की अकसाम हैं उसकी आगे, और मजमूई तौर पे हम कह लें कि वो आर्थराइटिस। अब मुख्तलिफ तरह के आर्थराइटिस हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, अब सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जिसमें जो हमारे हड्डियाँ और उसके साथ जो है जोड़ होते हैं, हड्डी जहाँ पे आकर दो हड्डियाँ मिलती हैं जोड़ बनता है, तो वहाँ पे कार्टिलेज की तय होती है
अच्छा
जोड़ को, ताकि दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाएं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि वो जो तय है
वो हट जाती
कार्टिलेज की वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अब फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है कि जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह, मेटाबॉलिक आर्थराइटिस होता है जिसमें बाज़ लोगों में जो है यूरिक एसिड उसकी मकदार जिसमें में ज़्यादा बन रही होती है, तो उसकी वजह से जो मुख्तलिफ उसके असरात मुरतब हो रहे होते हैं। अब ये जितनी भी आर्थराइटिस की अकसाम हैं, जब कोई फ़र्द इसमें मुबतला होता है तो इसमें होता ही है कि जोड़ को नुकसान पहुँचाएगा।
जी
जब जोड़ को नुकसान पहुँचता है तो इसकी ख़ास बात होती है आर्थराइटिस की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं कि जिसमें उसकी शिद्दत, बीमारी की शिद्दत होती है, एक ख़ास अरसा रहती है और
जी
उसके बाद जो है वो चली जाती है, उसकी इलामात जो हैं उसके असरात वो आपको नज़र नहीं आ रहे
यानी
होते,
खत्म हो जाता है,
ख़त्म हो
मरज या
जाते
रहता है।
हैं, ख़त्म हो जाता है उसकी।
अच्छा
लेकिन बाज़ लोगों में जब वो बीमारी आती है तो जितनी देर वो बीमारी एक्टिव रहती है, फाल रहती है, तो उस दौरान जो है वो जोड़ को नुकसान पहुंचाती है। जोड़ के नुकसान के साथ जो है वो पट्ठों में एक शॉर्टनिंग सी आ जाती है,
अच्छा
तो उनका जिस्म जो है वो रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया, वो बाज़ जो हैं वो आगे की तरफ झुक के चलेंगे, बाज़ जो हैं वो मसल जब उनके जिस्म के वो एक इम्बैलेंस से आता है, एक तरफ वो ज़्यादा जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि वो ख़ास अरसा जो बीमारी रहती है उसके बाद जो है वो बीमारी नहीं होती, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बीमार अडॉप्ट कर चुका है, उसको इख्तियार किया है
अच्छा
और वो उन्हीं असरात के साथ जो है वो चलता है। इतनी आगाही नहीं होती कि बीमारी असल जो बीमारी थी वो चली गई
खत्म हो
है,
गई
वो
है।
ख़त्म हो गई है। इसमें आर्थराइटिस में ये बीमारी आती जाती रहती है, मसलन कुछ
यानी
अरसा,
रुक जाती है और फिर वापस जो है
जी
ऊपर
कुछ
निकल के
अरसा
आती
मसल,
है।
अभी देखें कि 3 4 माह के लिए वो बीमारी के असरात रहे, फिर वो साल साल हर साल जो है वो बीमारी नहीं है, वो मसला नहीं है, वो ख़ास तरह का जो जरासीम है जिनकी वजह से वो बीमारी एक्टिव हुई थी वो नहीं है। और उसके बाद फिर ऐसे अफराद को जिनको पहले मसला हो चुका है उसमें दोबारा वो मसला आता है। तो बुनियादी तौर पे बताने का मकसद यही है कि उसको उसकी असरात जो उस बीमार के ऊपर मरतब होते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, एक
अच्छा
नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना चाहिए। वो जोड़ जो है वो जो ख़राब हुए हैं थोड़े बहुत जो है उसमें एक स्टिफनेस सी आई है, उसकी रेंज ऑफ
अच्छा
मोशन जो हरकत का दायरा है वो महदूद हुआ है, वो ठीक करना चाहिए। जो उसमें शार्टनिंग आई है ये फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है, और वैसे
अच्छा
भी मुआशरे में इस बात की आगाही होनी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि इन चीज़ों को जो है वो ठीक करके आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं।
अच्छा लोग आप आमतौर पर सोच रहे होते हैं कि उनकी वो बीमारी चल रही है, लेकिन बीमारी ख़त्म हो गई होती है, उसके असरात बस रह गए होते हैं।
बिल्कुल वो ये महसूस हो रहा था कि मसल ये
अभी
बीमारी है,
है,
उसकी
अभी
वजह से
बीमार
हमारा
है।
जिस्म जो टेढ़ा है ये कोई ख़ास बीमारी है उसकी वजह से, हालांकि वो बीमारी चली गई
अच्छा
होती
ख़त्म हो
है।
गया।
तो ये अब आर्थराइटिस है, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ये आता है, फिर जो है मर्द व ख़वातीन, ख़वातीन में अक्सर जो है इसकी मुख्तलिफ अकसाम जो हैं वो कदरे ज़्यादा पाई
जी
जाती
ज़्यादा
हैं।
सुनी गई हैं।
जी बिल्कुल।
तो ये जो आपने कहा मुख्तलिफ तरह की, आपने कहा तकरीबन 100 या 1000 इसकी
नहीं,
अकसाम
सौ
है,
से ज़्यादा
100 से
अकसाम है।
ज़्यादा
अब
है।
चूँकि हमारा आज का जो
जी
मौजू
तो
है
मैं
जिस
चाहूँगी
तरह,
उसके बारे में हमें बताएं कि ये
जी
क्या चीज़
हमारा
है।
जो आज का मौजू है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, इसी आर्थराइटिस में से एक किस्म है। अब कोई भी आर्थराइटिस जिस तरह उसमें जोड़ में सोजिश होती है, इसमें भी सोजिश होती
यानी इसकी
है,
आम अलामत जो है।
इसमें जो दर्द का एहसास हो रहा होता है, एक स्वेलिंग जो है वो जोड़ जोड़ फूलता है। लेकिन ये होता है कि अब ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजी बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर ही जो है अंदर का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है।
वो
अब
खुद
देखिए मुदाफ़ियाती निज़ाम का काम क्या होता है कि जब बाहर से जरासीम आते हैं तो
तो उन्हें
वो
अटैक
उन
करते
जरासीम को जो है वो मारते हैं।
जी।
अब बस का ये होता है कि हमारा जो वही जो होते हैं, जो एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है वो हमारे जिस्म के अपने जो सिस्टम है सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह
अच्छा
उन उनके वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे जो है वो ख़राबी पैदा करना
यानी वो
शुरू।
अपने ही बदन को जो है वो अटैक करने लगते हैं।
बिल्कुल। तो ये भी एक उसी उन्हीं बीमारियाँ जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनमें से एक ये भी है। अब इसमें जो है एक तरह की इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के जरासीम होते हैं जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में, मिसाल के तौर पे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेशाब की नालियाँ होंगी, जो जिंसी अज़ा हैं या पेट डाइजेस्टिव सिस्टम लगा लें, यहाँ पे वो बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, वहाँ पे वो इन्फेक्शन होती है। लेकिन उसके असरात जो हैं वो जोड़ों पर भी, वो जोड़ों को भी मुतासर,
अच्छा
उस पर भी उसके असरात ज़ाहिर हो रहे होते हैं, जोड़ों को वो मुतासर कर रहे होते हैं। तो अब ये नहीं है कि जो भी फर्ज है किसी खास उस तरह की जो इन्फेक्शन है उसका शिकार हुआ तो वो सारे के सारे अफराज हैं वो रिएक्टिव आर्थराइटिस का शिकार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अब तकरीबन अगर 10 अफराज हैं उनको इस तरह की इन्फेक्शन हुई है तो उसमें एक फर्ज है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस का शिकार होगा, यानी
अच्छा
बहुत कम होगा। और उसमें जो है वो मतलूबा जो जरासीम हैं वो जोड़ तक भी नहीं आते। आपको अगर वो जोड़ से जब वो सैंपल लिए जाते हैं, सैनेवल फ्लूड वगैरह और ये वो, तो वो जरासीम जोड़ में नहीं पाए
पता
जाते,
नहीं चलते हैं।
तो वो अपनी असल जगह पे ही होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरह के जब वो एंटीबायोटिक्स वगैरह वो एक्टिव हुए पड़े होते हैं तो उसकी वजह से ये जोड़ जो है वो फूलते हैं। और इसके साथ दूसरी भी बहुत सारी इलामत है, उस पर हम बात
जी
करेंगे।
ज़ारा अहमद पूछती हैं कि हमें ये बताएं कि ये जो आर्थराइटिस होता है, आपने बताया कि ये जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है ये ऑटोइम्यून है, क्या और तरह के आर्थराइटिस जो होते हैं वो ऑटोइम्यून नहीं होते हैं? और हुसैन मेहदी साहब हमारे लिए लिखते हैं कि हमें इसके वजूहात बताइए।
जी देखिए मुख्तलिफ तरह के आर्थराइटिस हैं, उसमें सारे जो हैं वो ऑटो इम्यून नहीं हैं। अब उसमें ये जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो
जी
ऑटो इम्यून है, तो इसलिए वो बाज हैं वो उसमें उसकी वजह जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। बाज के अंदर से सोजिश होती है, बाज में अंदर जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम अपना जो है वो उसको ख़राब कर रहा होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी कोई नोन जो है वो वजह हमारे पास सामने नहीं होती,
नहीं
तो
है
वो शक किया जाता है कि ये ऑटोइम्यून हो सकता है। तो इसलिए ये है कि सारे जो आर्थराइटिस की मुख्तलिफ तरह की जो 100 से ज़ायद अकसाम हैं
जी।
वो सारी की सारी ऑटोइम्यून नहीं हैं। तो
अच्छा
अब देखिए इसकी जो वजूहात है, वजूहात की तरफ वो थोड़ा सा हमने एक एक तो ये इस तरफ इशारा किया कि ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है
जी
जिसमें जिस्म का अपना मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो जिस्म के अपने खलियों को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो साथ जो इन्फेक्शन होती है, जो जरासीम जो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पे इन्फेक्शन उसकी वजह की वजह बनते हैं, तो उसमें जो है वो क्लेमाइडो जो है वो बैक्टीरिया हो गया,
अच्छा
ये जो है ये हमारे जो जेंटल ऑर्गन्स होते हैं, जिंसी अज़ा, इनमें पाया जाता है, इनमें जो है इसकी इन्फेक्शन होती है। फिर उसके बाद जो है सोलमाइनो जो है वो बैक्टीरिया होता है, शिजीला जो है ये
अच्छा
एक बैक्टीरिया है, ये मुख्तलिफ तरह के ये नाम हैं, ये स्क्रीन पे भी अभी आएंगे,
अच्छा
शायद वो बाज़ जो है वो पूरी तरह बाज़ याद नहीं रहते।
जी
तो ये मुख्तलिफ तरह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, अब ये दूसरे जिनकी बात की जिस तरह शिजीला है या सोलमोनो है, तो ये वाले हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसमें होते हैं। अब फूड पॉइजनिंग जो है सोलमोनीला जो है ये बैक्टीरिया या शिजीला जो है ये वाला जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया वगैरह हो गया।
जी
अब ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक की जो है इन्फेक्शन है वहाँ चल रही है, पेट दर्द वगैरह, लेकिन उसके जो है असरात फिर जो है वो जोड़ों पे मरतब होना शुरू हो गए, वहाँ पे जो है उसकी इन्फेक्शन की वजह से आगे मसला होना शुरू हो जाता है। जी हम बात कर रहे थे कि इसकी जो मुख्तलिफ वजूहात
वजूहत
हैं,
हैं
एक ऑटोइम्यून हो गई, एक जो है मुख्तलिफ जो जरासीम हैं। अब देखिए ये जरासीम जिस्म के दूसरे हिस्सों में, मसलन इसी पे हम बात कर रहे थे कि दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया,
जी
जिस तरह ये जेंटल ऑर्गन हो गए,
ऑर्गन
तो इन जगहों से ये जो हैं फिर दूसरी तरफ जो है उसकी इलामत जो हैं वो दूसरी जगहों पे जोड़ों में इसकी इलामत ज़ाहिर होती हैं। अब ये तस्वीर भी जो हैं
अभी
हमारे सामने
दिखाएंगे।
अगर ले आएँ तो वहाँ
जी
पे
आगे
इसमें हम देख सकते हैं। अब इसकी इलामत जो होती हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे देखें
जख्म हो जाता है या ये सूजन होती है।
ये मुख्तलिफ तरह के जो है इसकी इलामत होती हैं, एक
जी
छाले से पड़ जाते हैं,
अच्छा
वो सामने की तरफ भी इसके हाथों पे, हथेलियों पे, पाँव के जो तलवे होते हैं यहाँ पे भी, इस ये जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, इसमें जो टेंडोन होता है, जिस तरह आप एड़ी के पीछे आप
जी
देखें, ये
जी
बड़ा एक मज़बूत किस्म का टेंडोन होता है। टेंडोन और लिगामेंट, ये दो दो तरह कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। टेंडोन जब जो है
जी
आप पट्ठे को किसी हड्डी से मिला रहे होते हैं
तो वो
तो
कनेक्ट
वो
करता है
कनेक्ट करने के लिए
जी
दरमियान में टेंडन होता है, दो हड्डियों को मिलाने के लिए लिगामेंट होती है। तो ये जहाँ पे ये टेंडन और लिगामेंट ये दोनों जोड़ रहे होते हैं, उस जगह पे भी ये एक तरह की सोजिश का बायस बन रहा होता है। तो जब वो सोजिश होती है तो उसके साथ सुर्खी और ये चीज़ें, इस तरह की इलामत। और अगली तस्वीर जो है उसमें वाज तौर पर बताया गया है कि जिस्म के वो कौन से मखसूस हिस्से हैं, जहाँ
जी
पे
अभी
मिसाल के
मैं
तौर पे जिस तरह आँखों का हो गया, ये आँखों में मुख्तलिफ तरह के जो है वो मसाइल इसकी वजह से होते हैं, जिस तरह
अच्छा
आँखों से पानी बहना, आँखों में जलन का एहसास, आँखों में दर्द, और फिर फोटोफोबिया, एक तरह की
जी अगली
रोशनी से
तस्वीर
एक तरह का
आगे
जो है वो डर सा महसूस होना। अब आँखों के बाद जो है लोअर बैक पेन जो है, ये भी इसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है, और उसमें जो रीढ़ की हड्डी का ये वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सोजिश, और ख़ास तौर पे सैक्रोइलियक जॉइंट, दो दो जॉइंट होते हैं दाएं और बाएं तरफ लोअर बैक पेन के, थोड़ा लोअर बैक के थोड़ा सा नीचे करके, तो
जी
उसमें भी इसकी एक ये वजह बनती है, उसमें जब सोजिश होती है तो वो
तकरीबन सारे जोड़ों पे इसने
दर्द
अटैक कर दिया है।
नहीं सारों पे, सब पे नहीं करता, इसमें होता है कि एक तरफ जिस्म के एक हिस्से में जो
अच्छा
है अगर एक हमला एक वक्त में हो रहा है
अच्छा तो एक
तो
साथ
जो
सब तरफ नहीं होता है।
बेयरिंग जॉइंट है, जिस तरह ये घुटने वाला मखसूस
जी जी
मखसूस तौर पे ये घुटने वाला जोड़ है, इसमें आप देखें कि मसलन स्वेलिंग होती है, फिर जो है एड़ी वाला जोड़ है यहाँ पे, फिर स्किन के पे भी इसके जो है इस वजह से मसले बन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो पैरों की उंगलियाँ हैं यहाँ पर मसला बनता है, तलवे की बात की वहाँ पर रैशेज़ वगैरह, छाले से बनना, इस तरह की जो है इलामत इसकी ज़ाहिर हो रही होती हैं। जब शुरू में इसका जो है हमला होता है बीमारी का, तो एक शदीद किस्म की बाज़ लोगों को एक थकावट सी महसूस होती है,
अच्छा।
उनके जिस्म में एक दर्द का एहसास, बाज़ लोगों को साथ बुखार भी होता है,
अच्छा।
पट्ठे जो हैं वो दर्द दर्द करना शुरू कर देते हैं, या अब बाज़ लोगों को जो डायरिया वगैरह उसकी भी शिकायत रहती है जब वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होती है। तो ये कुछ जो हैं इसकी चीदा चीदा इलामात हैं जो जिसकी वजह से ये मसला पेश आता है। अब इसमें भी यह है कि तकरीबन 80% जो इसके मरीज़ होते हैं, इसमें जो लोग मुबतला होते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तकरीबन
अच्छा।
3 माह से लेके 1-12 माह का अरसा जो है उसमें ठीक हो जाते हैं, और तकरीबन वो जो 20% है मसल 5 में से 1 फर्द जो है उसको जब उसका मसला क्रोनिक होता है तो वहाँ पे जो है वो परेशानी का बायस बनता है, जिसको वो एक अच्छी तरह जो है देखने की ज़रूरत होती है।
रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये होता है कि लोगों लोग कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, यानी यही खजा का आया है, ठंडक आ रही है, तो उनके जोड़ों में दर्द होता है, तो इसमें भी क्या वो जोड़ों का जो दर्द होता है वो मौसम की वजह से उसमें तब्दीली आती है या बढ़ता है? और एक सवाल और आया है जो मरियम खान पूछती हैं कि ये जो गठिया होती है तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है या नहीं, कोई सा भी आर्थराइटिस को गठिया बोलते हैं?
आम तौर पे दूसरे सवाल की तरफ मैं
जी
पहला इशारा कर दूं, ये जो गंठिया गंठिया ये इस तरह के जो
जी
लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे उर्दू ज़ुबान में,
जी
तो ये रोमाटॉइड आर्थराइटिस या गाउट एक बीमारी होती है, उसमें यूरिक एसिड की जो मिकदार है खून के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जोड़ों की उसमें उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि आम माशरे के एक आम फ़र्द को तो वो इतनी सारी अकसाम और सारा ये हमारे लिए मसला बन जाता है उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं रोमेटोलॉजिस्ट, तो वो अब वो पूरी एक जो इसकी स्टडी के बाद है उनके लिए भी अच्छा खासा मसला होता है कि तशखीस देना कि दो जोड़ों में ये कौन सा है, क्योंकि इसकी इलामत जो है ज़ाहिर है जब जोड़ पे हमला होना है तो वहाँ पे सोजिश, दर्द और स्वेलिंग वगैरह और रेंज ऑफ मोशन का काम होना, हरकत का जो दायरा है वो जो अक्सर बेशतर जो हैं ये जितनी भी अकसाम हैं उसमें ये इस तरह की इलामात जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। फिर वो अंदर वजह का पता कर रहे होते हैं कि असल में किस वजह से ये सारा मसला सामने आ रहा है। तो अब वो दूसरा जो पहला जो आपका सवाल था कि मौसम की वजह से जो है इसके असरात मुरतब होते हैं। अब देखें ये जो हमारा इसमें सारे जो है इसमें इलेक्ट्रो एक केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जब कोई पैगाम आप जो किसी जगह पे उंगली टच करते हैं तो वहाँ से वो उसके पैगाम दिमाग को जाते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह के पहरेदार जो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग को आगाह करते रहते हैं। अब जो दर्द के जो रिसेप्टर होते हैं वो नॉसी रिसेप्टर उसको कहा जाता है, वो अब वो जो है वो सर्दी से अब ठंडी चीज़ से ज़्यादा हसास होते हैं। अब देखिए एक पैरेदार है वो किसी ख़ास चीज़ को देखेगा वो ज़्यादा शोर करेगा। अब होता वही है, बीमारी की शिद्दत वही होती है जो मौसम से वो पहले होती है, लेकिन उस ख़ास मौसम में वो दर्द का जो एक एहसास है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये भी मशवरा दिया जाता है कि जब सर्दियों सर्द मौसम होता है तो जोड़ के ऊपर जो लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं तो उनको ये मशवरा दिया जाता है कि जोड़ के ऊपर जो है वो कोई चीज़ लपेट के रखें, और जब कोई दर्द का शिकार होता है ख़ास तौर पर जो है वो जोड़ों के दर्द या पट्ठों के दर्द, तो वहाँ पर जब हम हॉट पैक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें रखते हैं, हीट देते हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट इसी तरह का होता है कि वो जो एक ज़्यादा पैगाम जा रहे हैं उनको कम कर देता
है। तो फिर इसकी जो है अब हम तशखीस की तरफ आते हैं कि क्या ख़ास इसके टेस्ट होते होंगे, क्योंकि आपने बताया कि बैक्टीरिया की वजह से होता है।
जी बिल्कुल, इसके जो है वजह को पता करने के लिए अब चूँकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ज़रिए जो है असल मुआलज जो है उसको इसकी सही तशखीस देनी चाहिए। अब इसमें होता भी ये है कि जो लोग जोड़ों के दर्दों का शिकार होते हैं वो मुख्तलिफ हकीमों से दवाइयाँ लेते रहते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स तब्दील करते रहते हैं, कभी किसी के पास गए कभी किसी के पास गए, तो इसमें भी ज़्यादातर जो ये जो ये आर्थराइटिस की जो अकसाम है बहुत सारी ऐसी हैं जिनका अभी हमारे मेडिकल में कोई पक्का किस्म का जो है वो इलाज नहीं है। इलाज इस तरह के किए जाते हैं कि उनको तकरीबन एक बीमारी की हालत को तब्दील किया, दर्द का इलाज कर दिया, सोजिश को कम किया।
तशखीस और इलाज पे हम आते हैं।
देखिए तशखीस के हवाले से जिस तरह हमने वक्फे से पहले बात की थी कि जो इसमें एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो तकरीबन 80% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं 3 से 12 माह में। अब अगर तो वो अफराद हैं उनमें बर वक्त अगर तशखीस ना भी हो तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन वो जो एक जो फ़र्द है जो 20% हैं जो क्रोनिक होते हैं उसमें अगर बर वक्त तशखीस ना दी जाए तो उसमें जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब देखें अब तस्वीर यहाँ पे स्क्रीन पे अब है वो जिस पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, ये शिजीला जो है ये एक बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इसको ख़राब करता है, फूड पॉइजनिंग इसकी वजह से होती है। क्लेमाइडिया जो है जेंटल जो है हमारे जो जिंसी अज़ा हैं वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होती है। साल्मोनेला ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक, और एचआईवी जो है ये वायरस है। तो अब ये जरासीम हैं बैक्टीरिया हैं जो इस सब की वजह से होता है। अब फिर इसकी तशखीस के लिए जैसे जिस्म में जो है वो मुआलजे करेगा कि मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट हैं जिसमें ESR देखा जाता है, सी रिएक्टिव वो जो है वो प्रोटीन उसको चेक किया जाता है, तो और दूसरे भी मुख्तलिफ अनवा के टेस्ट हैं वो मरीज़ पे मुनसर होता है। फिर जब इसकी इलाज किया जाता है, इसकी इलाज के जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, तो इस तरह स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चूंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो अगर बर वक्त उसकी तशखीस हो जाती है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस है और हमें पता होता है कि ये वाले जो बैक्टीरिया ये मसला जो है इसकी वजह से होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन एक एंटीबायोटिक होते हैं कि ताकि उसको बैक्टीरिया को ख़त्म करें, और फिर एनसीड जो होते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ये सोजिश को कम करने के लिए इनके असरा जो हैं वो दर्द को कम करते हैं। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन होता है, जो लोग जो है वो दर्द वगैरह सोजिश की वजह से जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, तो उनको इसकी जो है दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है इसकी एक एडवांस शेप वाले उनका भी असर इसी तरह का होता है, वो भी दर्द को कम करते हैं। इसका थोड़ा सा असर जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे ऊपर जैसे हम कहते हैं कि किसी जो है मरम की तरह जो है वो ट्यूब की सूरत में ऊपर लगाते हैं जिस्म के अंदर, इंट्रा आर्टिकल जोड़ के अंदर इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उसका असर जो है वो कदरे लंबे दौरानी के लिए होता है, या फिर दवाई की सूरत में खिलाया जाता है, वो मुख्तलिफ सिस्टम के ज़रिए होते हुए जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है इसके इसके असरात मरतब होते हैं। फिर इस अगर इन चीज़ों से भी मसले हल ना हों, यहाँ तक देखें उसमें दर्द कंट्रोल किया और सोजिश को काम किया, अगर इसके कंट्रोल करने से वो बीमारी अपना एक ख़ास दौरानिया जो है वो पूरा कर जाती है, फिर उसके बाद मरीज़ ठीक हो जाता है तो ठीक, उसके बाद जो है अगर हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर ये जो है आखिर में जो डी मार्ज जो है डिजीज़ मोडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स होती हैं, ये मेडिसिन होती हैं, ये दी जाती हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये ठीक कर देती हैं, ये उस बीमारी का रास्ता तब्दील करती हैं, ताकि अगर तो फ़र्ज़ किया एक जोड़ जो है उसने एक साल में ख़राब होना है, तो उसको जो बीमारी का एक रूट है उसको इस तरह से ढाल देती हैं कि वही जोड़ जो है वो चार पाँच साल तक निकाल जाता है या दो साल तक फ़र्ज़ करें। तो यानी वो जो जोड़ हैं बीमारी के असरात को कम कर देती है, वो जोड़ जो है वो ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं। फिर उसमें हमारी जो खुराक है उसका भी बड़ा अहम किरदार होता है। अब मेडिसिन वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन की जाहिर है किसी भी दवाई का जब ख़ास तौर पे हमने एनसीड्स का देखा या ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं इसकी जो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, तो ये हमारे जिस्म के डाइजेस्टिव ट्रैक को ख़राब करेंगे। दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट जो हैं हमारे गुर्दों पर इसके साइड इफ़ेक्ट
हड्डियों पे भी शायद होते हैं ना वो,
बिल्कुल हड्डियों पे भी होते हैं, हड्डियों का जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों का अंदर से खोखला करती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो खुराक है अगर वो इस्तेमाल करके आप दर्द को, जिस तरह अदरक है इसमें भी दिखाया गया है ये अदरक दर्द के लिए, अदरक वगैरह बरल इस तस्वीर में वो सारे फल जो है आप एक नज़र अगर नाजरीन देख भी लेते हैं तो उनको वो पूरी तरह समझ आ जाएगी कि इस तरह की जो खुराक है उसके इस्तेमाल से ये जो दर्दों के मरीज हैं उनको अफाका होता है।
दवा के साथ इन चीज़ों का भी इस्तेमाल रखें,
कोशिश करें कि दवा का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। बाज़ लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ उसमें दवाई इस्तेमाल करनी, दवाई को जो है आखिरी अपनी ऑप्शन रखें और कोशिश करें कि आम जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके ज़रिए जो है अपना इलाज करें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।